फिर तीसरी चीज जिससे मैं और आप अल्लाह ताला की मोहब्बत ले सकते हैं, फराइज की अदायगी के बाद नवाफिल का एहतमाम, कुर्ब मिलता है, अल्लाह का तकर्रुब मिल जाता है। बहुत प्यारी हदीस है और इसको आप हदीस कुदसी कह सकते हैं गालिबन। हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब भी किसी हदीस में ये जुमला आता है ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो वो हदीस क्या होती है? हदीस कुदसी होती है। इंग्लिश की एक बहुत खूबसूरत किताब है दारुसलाम की, 100 अहादीसें कुदसी हैं, तो छोटा सा बुकलेट है, तो वो उसमें ये काफ़ी हदीसें उन्होंने जमा की है। हदीस का एक एक लफ्ज़ सुनिएगा, यकीन करें कि अमल की दावत देने वाला है। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने मेरे चाहने वाले से दुश्मनी की, मेरा इससे जंग का ऐलान है। पूछिए, मैं अल्लाह के किसी प्यारे से दुश्मनी तो नहीं करती, और जो कुछ मैंने अपने बंदे पर फर्ज किया है, यानी नमाज रोज़ा वगैरह, बंदे की तरफ से मेरे लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ बायसे तकर्रुब नहीं है। यानी अल्लाह का कुर्ब फराइज अदा करने से मिलता है। फर्ज छोड़कर आप पूरी रात कोई बड़ी रात समझते हुए जाग भी जाते हैं तो अल्लाह की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो कुछ मैंने अपने बंदे पर फर्ज किया वो हो गया। अब मेरा बंदा मुस्तकिल नवाफिल नमाज अदा करके मुझसे कुर्बत हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ। नवाफिल से कुर्ब मिलता है। मैं फर्ज और नवाफिल को कैसे समझती हूँ कि फर्ज तो आपने करना ही था, नफल तो आप अपनी खुशी से करते हैं। फर्ज तो वो तोहफा है जो आपने किसी को देना ही था, मजबूरन शादी में जुगे थे, अगला भी इंतजार कर रहा था क्या लेकर आए, ये तो मजबूरी का सौदा था। नफिल के वहां देते हैं जहां कोई सोच भी नहीं रहा था, अनएक्सपेक्टेड चीज, और उसकी खुशी ज्यादा होती है। और बंदा जब नफिल पढ़ता है तो उसमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है। मेरा बंदा मुस्तकिल नवाफिल अदा करके मुझसे कुर्बत हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत करने लगता हूँ, हत्ता कि जब मैं इसको अपना महबूब बना लेता हूँ। अल्लाह अपना महबूब बनाए, सोचिए ये बहुत बड़ी बात है कि बंदा रब से मोहब्बत करे, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात है कि रब अपने बंदे से मोहब्बत करे। और इसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और इसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं इसको अता करता हूँ, और अगर वो मेरी पनाह तलब करता है तो मैं इसको पनाह देकर महफूज व मामून कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये आखिरी हिस्सा बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इसके ऊपर लोगों ने हलूल का नजरिया घड़ दिया। आपको पता, अंदर तू बाहर तू, हाथ मेरे बाहर तू। मैंने कई गैर मुस्लिम लोग जो उर्दू कल्चर के ही हैं, लेकिन जैसे सिख हैं, हिंदू हैं, इसी तरह मुसलमानों में कुछ सोच रखने लगे, जैसे कुछ खुद को इस्माइली कादियानी कहते हैं, मैंने ये सोच आज के दौर में बहुत कॉमन देखी है कि अल्लाह मेरे अंदर अल्लाह मेरे बाहर, और मैं कह सकती हूँ कि इसमें कवालियों का बहुत हिस्सा है, और ऐसी सूफियाना किस्म की गजलें और नज़में जिन्होंने लोगों को इन चीज़ों पर डाल दिया। तो ज़रा सा देख लीजिए कि पहली बात है इस हदीस में फ़राइज़ की अदायगी पे बात थी, चेकलिस्ट बना लीजिए मेरे फ़राइज़ कैसे हैं। जब तक फ़राइज़ पूरे नहीं है नवाफिल कबूल नहीं है, एक मेयार रख लें। दूसरी बात है, नवाफिल की कसरत अल्लाह का कुर्ब देती है। नफिल रखे अल्लाह और बंदे के बीच में, दूसरों को उनकी कानो कान खबर ना होने दें ताकि रियाकारी और दिखावा ना आए और इखलास बाकी रहे। फिर आप देखिए कि जब एक बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला उसको दूसरी चीज़ों से बेनियाज कर देता है। फिर उसको ये फिक्र नहीं रहती कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं लोगों की नज़रों में कैसा हूँ। फिर खतरे खदशे वसवसे शुभे सब दिल से निकल जाते हैं। जब अल्लाह की मोहब्बत मिलती है ना, तो बंदा दूसरी चीज़ों से बेनियाज होता है। दुनिया में भी आपने देखा होगा, किसी एक से मोहब्बत होती ना, फिर लोग दूसरे से बेनियाज होते हैं कि नहीं बस अब पांव लग गए, जहां पे लगने थे वही हो गया। और इसी तरह से फिर आप देखिए कि जब एक बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो उसके जो हाथ पांव की बात है ना, इसको भी समझ लीजिए, अल्लाह अंदर नहीं आता लेकिन अल्लाह अपनी माइयत दे देता है। लफ्ज लिख लीजिए, माइयत। बड़ी मारूफ आयत है, इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। ये कौन सी माइयत है? माइयत हकीकी नहीं होती बल्कि माइयत मानवी। ये मैं आपको मिसाल से समझा सकती हूँ। आप नॉर्वे में रहती हैं, बेटी हैं, अभी 1 साल पहले आप शादी होकर पाकिस्तान से इधर आ गई। अब आप यहाँ किसी मसले में हैं, कोई बच्चे का मामला कुछ है, तो आप अपनी अम्मी को फोन करती हैं, अम्मी आप आ जाएं। तो माँ क्या कहती है, बेटा फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब है बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बेटा मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ये है माइयत। एक माँ पाकिस्तान में बैठकर अपनी बेटी को ये जुमला बोलती है तो बेटी को तसल्ली होती है, अल्लाह सातवें आसमान पे है, अर्श है उसका सातवें आसमान पे, हर रात आसमाने दुनिया में आता है मेरे और आपके लिए, लेकिन अल्लाह किसी इंसान के अंदर हलूल नहीं करता, वरना तो नऊज़ुबिल्लाह फिर जो गुनाह आप करते हैं तो साथ अल्लाह करवाता है। इंसान पे ऐसे लम्हे आते हैं कि वो उन कुरान नमाज से दूर होता है, जनाबत की कैफियत है, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह भी उस वक्त साथ है? वॉशरूम में जाएंगे तो ऐसे, तो जब किसी कातिल ने कत्ल किया तो क्या नऊज़ुबिल्लाह अंदर अल्लाह भी था? ये सिर्फ अमल से दूरी के रास्ते हैं। तो ऐसी बात कहीं भी सुने तो उसको ट्रैश कर दें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। असल बात यह है कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए नफिल पढ़े, उसके बाद ये मतलब फिर क्या है, हाथ बनना कान बनना, अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। अल्लाह ताला कान कैसे बनता है कि फिर उसके कानों में कुरान का रस घुलता है, उसको कुरान अच्छा लगता है, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, फिर कुरान से कभी वो दुआएं सुन लेता कानों से, गीबते नहीं सुनता फिर जिसके कान अल्लाह बन जाए, हर हराम चीज उसके कानों से निकल जाती है, फिर वो घंटों नाफरमानी की चीजें सुन नहीं सकता, फिर अल्लाह ताला जिसकी आंख बनता है वो आंख कभी हराम दिखती नहीं है, अल्लाह हाथ बनता है उसके काम आसान हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये काम कर किसने दिए, पाँव कैसे बनते हैं, अल्लाह उन रास्तों का आसान करता है। आम दिनों में तो यही नेकियां होती है ना, हम एक जगह बैठे काम करते हैं, मैं तो तकरीबन ज्यादा दूर से नहीं आती ना, आप में से कई लोग कितनी दूर से आते हैं, मुझे यहां भी पता है आप में से चंद लोग ध्रमन से भी आ रहे हैं, क्या आप खुद आए? आप घर बैठे होते अगर आप सोच लेते ये अल्लाह लेकर आया आपको, और जितनी बड़ी नीयत करेंगे अल्लाह आपके लिए उतना बड़ा आसानी का काम करेगा। और मैं हैरान होती हूँ, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं कभी बदली, हर जगह करीब वाले कम आते हैं, दूर वाले ज्यादा आते हैं, और जो दूर से करीब आते हैं ना, कि अब हम इसलिए करीब आ रहे हैं कि हम कुरान सीखेंगे, अल्लाह जाने अल्लाह का मामला, लेकिन फिर मैंने उनको आता नहीं देखा, ये आम तौर पर मुशाहिदा है हर जगह। सुबहान अल्लाह, हमने इस साल जो दौरे कुरान करवाया तो बहुत सेंट्रल लोकेशन थी अटलांटा की, और जो उन्होंने चूज भी किया उसमें यही थी कि चूंकि शहर बड़ा है ना, तो ऐसी जगह थी कि हर तरफ से 20-25 मिनट और आधा घंटा 40 मिनट, ऐसी जगह थी। और जिस जगह हमने करवाया वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से एक मुस्लिम जगह है और बच्चे भी आते, माएँ भी आती, चारों तरफ से लोग ज्यादा आए, बिल्कुल जो वॉक इन लोग थे वो कम आए। तो मैं वो जो हमारे थे होस्ट, मैं उनको कहती थी डोंट वरी, ये अल्लाह की सुन्नत है। मदीना वालों ने अल्लाह के नबी की कितनी कदर की, मक्का वालों ने नहीं करी, तो इसलिए ये ना सोचें दूर करीब को, अल्लाह से कि अल्लाह तू मुझे ले चल, मत कहें करीब आऊं, मैं तो कहती हूँ कोई ना करीब आए, दूर से बंदा ज्यादा शौक से आता है, इल्ला ये कि फिर इंसान जो अपने लिए सहूलत रखे, लेकिन इस हदीस पे गौर करें तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए पहला कदम बंदे को उठाना पड़ता है, दूसरा कदम अल्लाह का होता है। आप पहला उठाएंगे ना, फिर अल्लाह दूसरा उठाएंगे, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से तो ऐसे, और अगर आप नहीं उठाएंगे तो अल्लाह नहीं उठाएंगे। इसकी मिसाल मैंने पहले भी दी आपको, बस आप देखिए कि जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक, आप इस पेन को क्या समझिए, एक, ये क्या है, अब ये देखिए मेरे हाथ, जीरो लगाइए ना इस एक जीरो को, ये क्या है, 10 हो गए ना, एक था तो 10, अब मैं दो जीरो डाल दूं, तीन डाल दूं, चार डाल दूं, पांच डाल दूं, अब मैं इसको गिरा दूं, ये 5 0 क्या बन गए, जीरो। ये आप हैं, दिस इज यू, आप खड़े हो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह पहले एक मदद का जीरो लगाता है, आप खड़े रहते हैं अल्लाह एक और लगाता है, आप खड़े रहे अल्लाह आपके हाथ इतने बना देगा कि तन्हा चले थे लोग मिलते रहे, काफिला बनता रहा, जिस दिन आप गिर जाएंगे वो सारी मदद भी गिर जाएगी, ये बात हमें नहीं पता। हम कहते नहीं पहले अल्लाह जीरो सारे लगाए फिर हम काम करें, अल्लाह तो जितनी भी आपकी मदद करेगी उसकी ताकत के मुताबिक वो जीरो ही है, तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेंगे और इंशाल्लाह खैर भी बहुत सारी उससे आएगी। फिर इसी तरह अगली चीज क्या है कि जुबान और कल्बो जवारिख से अल्लाह का बकसरत जिक्र करना, मुबालगे के साथ अल्लाह का जिक्र करें, हदीस में आता है अल्लाह का इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें मुराइन यानी दिखावेबाज शोबाज कहने लगे। आपकी नीयत ये ना हो कि लोग आपको बड़ा कहें, लेकिन लोग कहते हैं तो कहने दें, जरूरत नहीं है उसकी करने की, आप उनको अपने साथ रखिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि एक सवाल गुजरता है पिछले नुक्ते में, फराइज और नवाफिल में। बस लोग क्या कहते हैं कि जी कुछ लोग तो फर्ज नहीं पढ़ते लेकिन नफिल बहुत पढ़ते हैं, तो क्या फिर नफिल छोड़ दें? क्योंकि अभी मैंने भी आपको बताया ना कि जिसने फर्ज नहीं पढ़े उसके नफिल कबूल नहीं। तो इसका जवाब क्या है कि नफिल छोड़ेंगे ना तो हालत और बिगड़ जाएगी। ये नफिल एक दिन उसको फराइज के करीब ले आएंगे और ये नवाफिल उसको अल्लाह की इताअत पे ले आएंगे। फिर अगली चीज है जुबान और कल्ब और जवारे से अल्लाह का जिक्र करना। जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, जितना अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह की मोहब्बत उतनी आएगी। सूरत अनफाल आयत 45, वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। कसरत से जिक्र करना पड़ेगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि किसी अच्छे काम के करने के बाद भी अल्लाह का जिक्र करें। मसलन नमाज अच्छा काम है ना, तो उसके बाद क्या है अज़कार? आपको हदीस में और दुआओं की किताबों में पूरा चैप्टर मिलेगा नमाज के बाद के अज़कार, ठीक है? तो इबादत के बाद भी अज़कार। इसी तरह देखिए ईद की नमाज क्या है? रोजे रखे, उसके बाद ईद की नमाज क्या है? उन रोजों के बाद का शुक्राना। सूरत बकरा आयत 185 में आते, वली तुक मिलो लिद्दा तो वली तुक अब्बिरु अल्लाह अला मा हदाकुम अला अल्लकुम तश्कुरून, ताकि तुम गिनती पूरी करो और तुम अल्लाह की बड़ाई करो। ये जो ली तुकब्बिरुल्लाह है ना, ये ईद की तकबीरें हैं। यानी रमजान के बाद जो तकबीरात हैं, ये अल्लाह की बड़ाई होती है इस शुक्राने पे कि उसे रमजान में नेकियां करने की तौफीक दी। इसी तरह देखिए हज जैसी इबादत करें तो उसके बाद जिक्र के, सूरह बकरा आयत 200, फैजा कदैतुम मनासिककुम फज़कुरुल्लाह, जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लो तो अल्लाह को याद कर लो। फिर इसी तरह नमाज के बाद के अज़कार कहाँ लिखे? सूरत निसा 103, फैजा कदई तुम सलात फज़कुरुल्लाह क़ियामं वक़ूदन। लोग कहते हैं नमाज के बाद क्या अल्लाह को याद करें? पढ़ तो लिए, नमाज के बाद तुम कुछ और याद करेंगे? तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह को याद करना है बाद में भी। फिर इसी तरह से जुमे की नमाज इतनी खूबसूरत इबादत है, तो उसके बाद क्या है? सूरत जुमा आयत 10, फन तशीरु फिल अर्दि वब्तहू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफले होन। बस बिखर जाओ जमीन में और तलाश करो उसका फजल और याद करो अल्लाह को कसरत से ताकि तुम फलाह पालो। तो क्या पता चला, नेकी करके बैठना नहीं बल्कि और नेकियां भी करनी है। तो जिक्र बहुत खूबसूरत तरीका है अल्लाह की मोहब्बत पाने का। मैं इसको कैसे सोचती हूँ, खाने के बाद मीठा, तड़प लगती है ना मीठा खाने की, हुब होती है। तो नमाज पढ़ ली, ये तो फुल मील था, तो बाद में चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, तो ये वो पान छा लिया या वो कावा पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस नमाज को हजम कर रहे हैं। और आप देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत के सामने हवा परस्ती के मौके पर, हवा परस्ती किसको कहते हैं? नफ्स परस्ती को, ख्वाहिशात। हवा परस्ती के मौके पर नफ्स के ना चाहते हुए अपनी ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान कर देना अल्लाह की मोहब्बत के इर्तका यानी उसकी बुलंदी की मनाजिल तय करने की कोशिश में लगे रहना। अगरचे इन मनाजिल तक रसाई जुए शीर यानी दूध की नहर लाने के बराबर है। मतलब कहने का ये कि बंदा मोमिन दिन के किसी हिस्से में मुतमईन होके बैठता नहीं है। नमाजें पढ़ने के बाद भी, हज करने के बाद भी, रोजे रखने के बाद भी वो मुसलसल अल्लाह की मोहब्बत पाने की कोशिशें करता है। अब पता कैसे चलता है कि इंसान ने अल्लाह की मोहब्बत के उस मर्तबे को पा लिया? तो इसकी दो अलामतें इन्होंने लिखी हैं। एक है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा कामों की अंजाम दही, अगर ते दिल ना भी चाह रहा हो। ये लिखिए खास तौर पे न्यू कमर्स, बच्चे आपके, आप नए नए उनको नमाज पे लगा रहे हैं। आप कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, जब मैं कहती हूँ तो पढ़ता है। कई माओं का ये मसला होता है ना, पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे याद दिलाने पर नो प्रॉब्लम एट ऑल, करने दें। तो पहली चीज क्या है कि दिल नहीं भी करता फिर भी नेकी करें, और दूसरी चीज यह है कि गुनाह से रुकना चाहे दिल में गुनाह की मोहब्बत हो। अब ये दो कुर्बानियां आपने दी ना, नेकी करने को दिल नहीं कर रहा तो दी की, गुनाह से रुकने को दिल नहीं चाह रहा तो रुके। तो ये जो ईसार और कुर्बानी है ना, ये आपके नफ्स को कंट्रोल करेगी, तो शहवत आपके अंदर दब जाएगी, इससे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। फिर इसी तरह देखिए रस्म और रिवाज, बच्चों की शादियों के मौके पे इसको खुल के आप देख सकते हैं। उस वक्त आप अपने ऊपर जब्त कीजिए, मैंने नहीं शो ऑफ करनी। ये सारी चीजें जितना नफ्स को आप कुचलते जाएंगे, आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत देती रहेंगी। और एक वक्त आता है कि बंदा ये सारी रास्ते की मुश्किलात सहते सहते अल्लाह ताला का कुर्ब पा लेता है। तो फिर यहां आपको क्या पता चला कि जिक्र सिर्फ जुबान से नहीं है, दिल से भी नहीं, जवारेह से। और जवारेह का जिक्र क्या है? اپنی زندگی کے عملی معاملات میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس کا معاشرہ بھی عادی ہو چکا ہو اور خاندان بھی عادی ہو چکا ہو، تو اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی محبت ملے گی۔ اور یہ فیکٹ ہے، کسی انسان کے لیے آپ تھوڑی سی قربانی دیں نا تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں آج میں نے اس کے لیے سٹینڈ لیا۔ اور آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کے لیے سٹینڈ لے، آپ کہتے ہیں واہ اس نے میرے لیے ایک بات کی، تو بس اس سے آپ کے دل میں دیکھیں گے کہ اتنی زیادہ دوسرے کی محبت آئے گی۔ بس کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آئے نا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، خاندان ادھر ہے دوست ادھر ہے، اس وقت اس بات کو یاد کریں، آج اللہ بھی تو خوش ہوگا نا کہ میں نے اس کے لیے سٹینڈ لیا، سارا خاندان ایک طرف تھا میں اس طرف تھی، اور انجوائے کریں۔ ہم جب ایسے وقت پر رونے بھی لگ جاتے ہیں نا ساتھ، اور دکھی بھی اور غم زدہ دکھتے ہیں، پھر اور مسئلے بگڑتے ہیں۔ خوش ہوں آپ بھی ہنسے، بس میں نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کرنا، مجھے یہ چیز نہیں کرنی۔ اسی طرح دیکھیں کہ ابن قیم کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو جب بھی نفس پرستی یا شہوت پرستی یا گناہوں اور معاصی کی محبت اور چاہت یا اس کی طرح رجحان کی کیفیت یا حصول لذت کے شوق میں برے خیالات اور افکار کے چکر میں من جانب اللہ لگا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ان ساری چیزوں میں، جب انسان میں نفس کی خواہشیں ہوں، شہوت ہو، گناہ کرنے کو دل کرے، ایسے وقتوں میں بندے کو اس جگہ سے ہٹا کر اللہ اپنی طرف لگا لے، تو اصل میں اللہ اس کو اپنی حقیقی محبت کی طرف کھینچتا۔ کتنوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ دل کچھ اور چاہ رہا ہے، معاشرہ کچھ اور چاہ رہا ہے، رسم رواج کچھ اور ہے، گناہوں میں محبت ہے، سب کو چھوڑ کر اللہ نے آپ کو اپنے رستے پہ لگا لیا، سب گئے کسی ایسے کام میں جانا فرمانی ہے، آپ وہاں سے نکلے تو آپ اللہ کے گھر آ گئے۔ یہ لگانا آپ کو، اصل تو اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ لگایا، لیکن اللہ آپ کو اپنی محبت کی طرف کھینچتا۔ کہہ لیجئے کہ جب سارے گھر والوں سے کٹ کر بندہ دین کے اوپر چلتا ہے تو جلدی ایمان ملتا ہے، یہ آپ آزمائیں گے۔ ایک وہ وقت تھا آپ تنہا تھی اپنے گھر میں، آپ سٹرگل کر کے آتی تھی، ماں بھی دشمن، باپ بھی دشمن، سارے گلی محلے والے آ کے کہہ رہے تھے بیٹی کو کہاں بھیج رہے ہو، لیکن آپ آتی رہی آتی رہی۔ وہ وقت، وہ رونا دھونا، ہائے ابا منع کر رہے ہیں، ابو ناراض ہوں گے، ابو سے چھپ کے، ابو سے چوری، ابو سے چوری، وہ آنسو قیمتی تھے، آج کوئی مجبوری نہیں رہی۔ آج آپ کے گھر والے موافق، آپ کو شوہر بھی اچھا مل گیا، آپ کو ساس بھی اچھی مل گئی، آپ کو فلاں فلاں، آج آپ کا امتحان ہے۔ اب بات سمجھ آئیے، مجبوریوں میں اللہ جب آپ کو اپنی طرف لاتا ہے نا تو اس سے آپ کو ایمان ملتا ہے، اس کی محبت ملتی، اور وہ محبت فاتح عالم، یہ محبت وہ فاصلے طے کر لیتی ہے جو بعد میں نہیں ہوتے۔ کئی لوگ بعد میں سست صرف اس لیے ہو جاتے ہیں کہ حالات موافق ہو گئے ہیں، ملے کسی کو ایسا شوہر جو دین سے دور ہو، پابندیاں لگانے والا ہو اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو، پھر ایمان زندہ رہے گا۔ گھر میں لڑائی ہے، اندر سکون ہے، لیکن جب گھر میں سکون ہونے لگتا ہے تو اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے نفس امارہ اور نفس لوامہ کی، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ چھوڑ دے۔ اگلا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہاں ذکر کر دیتی ہوں۔ کھانے میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ صرف میٹھا، میٹھے کے ساتھ نمکین۔ زندگی میں خوشیاں اور موافقت جو ہے نا، یہ میٹھا کھانا ہے، لیکن ناگوار حالات، مجبوریاں، آزمائشیں، یہ نمکین کھانا ہے۔ اگر غم نہ آئے، اگر پریشانیاں نہ آئیں، اگر ناموافق حالات نہ آئیں، لوگ بھی ہوتے ہیں ناموافق، حالات بھی ہوتے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، بچوں کے مسئلے، یہ کھانے کا نمک ہے۔ صرف میٹھا کھا کے بھی بندے کا پیٹ نہیں بھرتا تو یہ بھی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، جہاں غم بھی خوشی کی طرح خوشگوار لگے، زندگی کو وہاں لانا ہے، اللہ کے دیے ہوئے غم بھی اچھے۔ تو لہٰذا یہ جو آزمائشیں، نفس کشی کی کھیل ہے، یہ آپ کو ایمان دیتی ہے۔ بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرکشن ہوتی ہے، آپ جا کے دیکھیں دو چیزیں ایک دوسرے سے رگڑتی ہیں تو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ فرکشن ہی تو ہمیں اللہ تک لاتی ہے۔ اور آج سارے ہی حالات اچھے ہو جائیں، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، تو ہم خود ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت خود ٹھنڈے ہو نا، یاد کریں اپنی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کہ رو کے، چپ کے چپ کے دعائیں مانگ مانگ کے گھر سے آتے تھے کہ کسی طرح آ جاؤں، کتنے اندیشے تھے کہ پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہیں کہ نہیں، ماں ناراض ہے تو پتہ نہیں کام ہو جائے گا نہیں، ابا ناراض ہوئے تو پتہ نہیں وہ نیکی بھی نیکی ہے، جہاد بھی جہاد ہے کہ نہیں۔ लेकिन वो वक्त जब टल जाता है फिर हम खुद ठंडे होने लगते हैं। हम कहते हैं इट्स ओके, बहुत कुछ हो गया। और याद रखें ये जिस इंसान के ऊपर हो रहा होता है उसको खुद नहीं पता चलता, इतना कॉम्प्लेक्स है ये इंसान। और शैतान इंसान की एक एक रग को जानता है, उसको सब पता है इसको मैंने कहाँ से पकड़ना और कहाँ लाना है। तो उसमें बचाव का एक ही रास्ता है कि पलट आओ हुब्बे इलाही की तरफ। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बहुत सारी चीज़ों पे रोकने से बचाती है। ये लिखते हैं कि ये आदत है, कुलिया मीन इट्स अ रूल। क्या इंसान अपने दिल को रगबत वाली चीज़ों से दस्तबरदार नहीं कर सकता? ट्रू है ना। आपके सामने आम रखे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, मजबूर हो जाएंगे आम खाने पे, दिल ठुकता है चीज की तरफ तो हटते नहीं जब तक इसको इससे कहीं ज्यादा बेहतर और मौजूद तरीन चीज नेमुल बदल के तौर पर ना मिल जाए। हाईलाइट करिएगा, ये यकीन करें, ये आप अपने हाथ से लिखिएगा जैम बोर्ड में। इंसान अपने नफ्स को, अच्छी लगने वाली चीज को नहीं छोड़ना चाहता, सिर्फ एक ही सूरत है उसको छोड़ने की, उससे बेहतर चीज उसके सामने ले आए। मसलन आम की मिसाल दे दी, बच्चे को आप आम दिखाएं, उसको पसंद है, आप चाह रहे आम ना खाएं तो आप उसके सामने चॉकलेट का एक डब्बा रख दें, अब आमों के छिनने का गम नहीं होगा, चॉकलेट ले लेगा। कहते हैं कि जब तक उससे बेहतर चीज ना मिल जाए, इसी तरह कहा जाता है जो शख्स अपने महबूब के दीदार और उससे मुलाकात के शौक में सुलगते हुए अंगारों और कांटों की सेज पर चलकर जाए, इसकी मोहब्बत उस शख्स की मोहब्बत से ज्यादा बाअज़मत है जो महबूब तक रसाई हासिल करने की गरज से दुबली पतली फुर्तीली तनोमन ऊंटनियों पर सवार होकर हाजिरी दे। फर्क पता चला? पहला वो है जो मुखालफतों में आया अल्लाह की तरफ, दूसरा वो है जिसकी मुवाफकतें। तो कहते हैं दूसरे को वो लज्जत नहीं मिलेगी जो पहले को मिलेगी। बस ये शख्स इस शख्स की बराबरी कैसे कर सकता है जिसने अपने महबूब की खातिर अपनी नफसानी शहवात से मुजाहिदा करके इनका गला घोंट दिया और इस राह में हायल रुकावटों से बरसरे पेकार, यानी इस रास्ते में हायल रुकावटों की बिल्कुल भी परवाह न की। इसके खिलाफ वो शख्स जिसने महबूब तक पहुंचने के लिए जरा भी मेहनत नहीं की ना मुजाहिदा किया। तो समझ में क्या आया? कुरान की एक आयत याद आ रही है, वलकद खलकनल इंसान फी कबद, कबद कहते हैं जिगर को, लिवर। हमने इंसान को मुश्किलात में पैदा किया। गर्मियों में कद ज्यादा बढ़ता है, गर्मियों में पौधे फल फसलें सब अच्छी उगती हैं, आजमाइशों के दिनों में नेकियां ज्यादा होती हैं, ये तो मान लीजिए। बहुत कम लोग हैं जो खुशियों में नेकियां करते हैं, गमों में बहुत आसान होता है अल्लाह से मिलना। दो ही सब्र है, एक इस्तरारी और एक इख्तियारी। इस्तरारी सब्र बड़े आराम से लोग करते हैं, कोई मर जाता है उस दिन सारे बैठ के कुरान पढ़ रहे होते हैं। इख्तियारी सब्र क्या कि बेटे की शादी का हाल सजा हुआ है, सब लोग आए हुए हैं तो उस वक्त मगरिब की नमाज अदा करना भी मुहाल है, क्या अब कौन उठे और नमाज पढ़े, ये इख्तियारी सब्र है। तो ये सब करेंगे तो अल्लाह से मोहब्बत मिलेगी। फिर कहते हैं कभी तुमने गौर किया कि इस कायनात में पाए जाने वाले नेक और साले लोगों को फरिश्तों से अफसल क्यों कहा गया? है ना ये आपके जहन में क्वेश्चन कि फरिश्ते क्यों इंसान से आला नहीं है जबकि वो तो गुना भी नहीं करते? तो उसकी एक लफ्ज में बात समझ लीजिए, इंसान नफ्स खुशी करता है, शहवतों पे काबू। फरिश्तों में न ख्वाहिश है न शहवत है, न झगड़े हैं ना इंसानी मामलात हैं। तो इंसान चूंकि इन सारी चीजों से निकल कर आता है इसलिए उसका मुकाम फरिश्तों से ज्यादा है। फरिश्ते दिन रात सुबह शाम तस्बीह तहलील अल्लाह का जिक्र करते हैं, ठीक है, वरना आप देखते हैं आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि हदीस में आता है कि आसमान चिरचिराता है, लेकिन जमीन पे लोग अल्लाह के रास्ते में चलते हुए इतनी कुर्बानियां चुके देते हैं, रुकावटें आती हैं इसलिए। और यहाँ कितना खूबसूरत इन्होंने तकाबुल किया है कि कभी आपने सोचा कि जन्नत की हूर कितनी हसीन होगी लेकिन दुनिया की औरत उससे क्यों प्यारी है? क्यों? हदीस में आता है कि हूरें तो औरतों के लिए ऐसे हैं जैसे गुलाम, इसलिए कि दुनिया की औरत नफ्स पे मुजाहिदे करके अल्लाह के हुक्मों पे झुक के नफ्स पे काबू पाकर अल्लाह की तरफ आई, इबादतें की, नमाजें पढ़ी, शोहरों के साथ रही, सब्र शुक्र। इसके बाद जब गई हूर ने तो ख्वाहिश ही ना रखी। तो क्या सारी बात का इसका खुलासा क्या कि ख्वाहिशात पे काबू पाना बंदे को अल्लाह का कुर्ब दे देता है। अब आप और मैं पढ़ने में तो जितना मर्जी वक्त लगा लें लेकिन अगर अमली जिंदगी में इस पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। आज के लिए इतना काफी है, कोई बात शेयर कीजिए कि इन सारी चीजों पे मैं अमल कैसे करूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर की दुकान पे बैठ के प्रिस्क्रिप्शन लें, अपना दुख सुख बताएं, वो आपको नुस्खा लिख दे। अभी तक बस इतना काम हुआ है आपको पता। आप अपने दिल की सलाह के लिए बैठे और आपने आज एक मरज दूर करना था कि अल्लाह से मोहब्बत नहीं मिलती, तो अल्लाह ने आपको अब तरीके बता दिए। अब क्या करेंगे घर जाके? जब डॉक्टर की दुकान से उठते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? जी, अमल करते हैं। तो अगर डॉक्टर ने जो कहा है ना उस पे अमल करें, जो दवा उसने दी वो ना खाएं, तो क्या होगा? फायदा नहीं होगा। तो फिर आप, मैंने आपने क्या करना है? अमल। आप इस इतने हिस्से को घर जाके फिर पढ़ें और इसमें से अपने अमल से पढ़ें। कम से कम 1 घंटा दें घर जाकर इस टॉपिक को पढ़ने में, और अकेले बैठे अपने से बातें करें। मैं तो बुक खोल लूंगी ना, तो एक जुमला पढ़ूंगी, फिर सोच में पड़ जाऊंगी, पता नहीं उसके बाद सोचती ही रह जाऊं, फिर अगली पे बात, फिर अगली पे जाऊंगी। ये दिल ही है जिसके, वो कहते हैं ना, मामला दिल का ही खराब है। सच बात है। कभी आप ये कोर्स नहीं करेंगे, जिगर की सलाह और फिफड़ों की सलाह और गुर्दों की सलाह, आप दिल की सलाह पे। और क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि एक टुकड़ा है जिसमें, और देखिए मुट्ठी भर का है। मजे की बात है, आपको पता है दिल का साइज क्या होता है? ये बिल्कुल आपके, जिसके हाथ के जितने, बच्चे की मुट्ठी है ना, बच्चे का दिल उतना है, बड़े की मुट्ठी जितनी उतना दिल है, तो ये मुट्ठी में नहीं आता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कर, बस ये धड़कता दिल ही काम कराएगा। जज़ाकअल्लाह खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।